वह सदा अपने ही भीतर घुलता रहा है, अपने से बाहर आने की, जीवन को अपनाने की, संसार को अपना बनाने की चेष्टा छोड़कर अपने को संसार का बनाने की चेष्टा उसने कभी नहीं की। वह प्यार का मांगता ही रहा है, प्यार देना उसने जाना ही नहीं। लेकिन यह जो इस क्षण उसकी परिस्थिति है, या उसका दोष है, या कुमार का, या और किसी का, या जो सूनापन उसे इस समय लग रहा है, वह क्या उसकी प्यार करने की अयोग्यता से है, या प्यार पाने की असमर्थता से? कविता की एक पंक्ति शेखर के मस्तिष्क में नाच गई। वह उठा और लिखने लगा। ओ तू मानव, ओ आकारहीन घनीभूत भावना, मात्र जिसका मैं एक अंग हूँ, मैं अपने को, अपने प्रियो को भूलकर तेरा ही होना चाहता हूँ। तुझे प्यार करता हूँ, तुझे प्यार करने की अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य को प्यार करता हूँ। ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे ही प्यार करूँ और तेरे प्यार को सह सकूँ। रात को शेखर भोजन के लिए उतरा तो उसने हॉस्टल के चपरासी से पूछा, कुमारप्पा नहीं आए? अभी वे तो सर्कस देखने गए हुए हैं। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। शेखर बिना भोजन किए ही ऊपर लौट गया और कमरे के खिड़की पर बैठकर बाहर दौड़ती हुई अनेक ट्राम गाड़ियों को देखते हुए उनकी घबराहट, मोटरों के हॉर्न, रिक्शा वालों की पुकारें सुनते हुए, लेकिन अपने को कुछ भी देखने, सुनने, समझने में असमर्थ पाते हुए, अर्थहीन प्रलाप की तरह अपनी लिखी हुई एक पंक्ति दोहराने लगा। ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे ही प्यार करूं और तेरे प्यार को सह सकूं। शेखर 2 दिन कॉलेज नहीं गया, कमरे में ही इस प्रतीक्षा में बैठा रहा कि कुमार उसके पास आए, क्षमा मांगे या कुछ सफाई दे, पर कुमार नहीं आया। तीसरे दिन बहुत उकता कर शेखर शाम को बाहर निकला। उसने निश्चय किया कि समुद्र पर जाकर बैठेगा और अपने उलझे हुए मस्तिष्क को साफ करेगा। कुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया, ना उसके कमरे में प्रवेश करके उसे देखने की इच्छा उसे हुई। उतरते हुए उसने एक कमरे में से 2-3 कंठों की हंसी सुनी और उसमें कुमार का भी स्वर सुनकर ठिठक गया। एक स्वर, आजकल शेखर बाहर नहीं निकलता, क्या बात है? अरे तुमने नहीं सुना, उसके पिता ने उसका खर्च बंद करा दिया है, कुमार कहता है। तब तो ठीक ही बात होगी, और एक हंसी का ठहाका। तभी आजकल कृष्णमूर्ति के गहरे हैं, क्यों कुमार? फिर एक ठहाका। तब कुमार का स्वर, अरे यार छोड़ो भी इन बेवकूफों की बातों को, शेखर तो बुद्धू है। शेखर धीरे धीरे रेलिंग के सहारे नीचे उतर गया। नीचे जाकर उसने एक पर्चा लिखा और चपरासी को देकर कहा, या कुमारप्पा को दे आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। पर्चे पर लिखा था, हाँ मैं बुद्धू और बेवकूफ़ हूँ, लेकिन किस दिन मैं बेवकूफ़ बना जानते हो? मैंने समुद्र तट पर कहा था, कुमार यदि तुम किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसी समय अपने ही वाक्य को ना समझने की बेवकूफ़ी की थी मैंने, कीड़े किसके हैं? क्षण ही भर में कुमार ने आकर कहा, इसका क्या अर्थ है शेखर? अर्थ क्या? काफ़ी साफ नहीं लिखा मैंने? मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसी बूते पर तुमने मेरा इतना अपमान किया है ना? अगर मैं, शेखर ने धधक कर कहा, कर्जदार? लेकिन फौरन ही शांत होकर बोला, ठीक है, तुम्हारी पैसों के मोल बिकी आत्मा अगर उससे बड़ी बात नहीं सोच सकती तो उसका दोष नहीं है। वह घूमकर लंबे लंबे डग भरता हुआ समुद्र तट की ओर चल पड़ा। अंधेरा था, बादल छाए थे, तट सूना निर्जन था, पवन बिल्कुल शांत था और समुद्र भी असाधारण शांत था। शांत और प्राय मुख, यद्यपि ऐसा जान पड़ा था कि उसके भीतर कहीं प्रकाश जल रहा है या अवगुंठित बिजलियां नाच रही है, विस्फोट की तैयारी थी वह। और शेखर को लगा यदि समुद्र की दशा ठीक वैसे ना होती तो वह क्षण भर में उसके किनारे ना ठहर सकता। जब शेखर उस तंद्रा से जागा तब वह सुनने लगा कि हॉस्टल में उसको लेकर अनेक प्रकार की बातें चल रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। वह ब्राह्मण है, उसका नाम भी चंद्रशेखर पंडित है, लेकिन उसकी चुटिया कहाँ है, जनेऊ कहाँ है, वह अपना पूजा पाठ कब और कहाँ करता है। उसने ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार द्विजत्व पाया होगा, लेकिन उसने अपने आचार से उसे खो दिया है, वह भ्रष्ट है। जिस बोर्डिंग में शेखर था वह ब्राह्मणों के लिए था, इसलिए पिता की आज्ञा अनुसार शेखर वहाँ आकर रहा था। अब वह उसके ब्राह्मणत्व के विषय में किसी की आपत्ति भी नहीं हुई थी। अन्य छात्र ब्राह्मणत्व के और संस्कारों का पालन तो करते थे, लेकिन भीतर उनका आदर उतना गहरा नहीं था। उनका भोजनागार सब ओर से घिरा हुआ था, ताकि किसी आते जाते व्यक्ति के कारण उनके भोजन में दृष्टिदोष ना हो जाए, वह छोटी जाति द्वारा देखा जाकर भ्रष्ट ना हो जाए। कभी ऐसा हो जाता तो वह भोजन उतना ही आघात हो जाता जैसे किसी कुत्ते ने उसे जूठा कर दिया। यद्यपि कुत्ते कई बार भोजनागार में घुस आते थे और उन्हें हिस करके भगा देने का पर्याप्त होता था। शेखर को जानते देर नहीं लगी कि इन शंकाओं का अंकुर कहाँ है, लेकिन कुमार से बात करने का या उसका मुख देखने का भी उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं हुई। वह देखने लगा कि सभी छात्र उसकी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई विदेशी जंतु है, और उसे लगता मन ही मन वे सोच रहे हैं कि अगले जन्म में शेखर क्या होगा, कुत्ता, कौवा या कीड़ा, और जैसे उसके भाग्य पर दया से भरे रहे हैं। तब वह उस दया का ध्यान करके जल उठता और सोचता, मैं नरक में जाऊं तो इनका क्या। पर उनकी दया इतनी नहीं थी कि उसके नरकवास की कल्पना से द्रवित होकर अपने परलोक भूल जाए। उन्होंने निश्चय किया कि वे शेखर के साथ भोजन नहीं करेंगे, और शेखर को एक दिन मालूम हुआ कि सब छात्रों की ओर से प्रिंसिपल के पास एक अर्जी दी गई है, उसका अलग प्रबंध किया जाए, नहीं तो वे हॉस्टल छोड़ने को बाध्य होंगे। उन्होंने रसोइयों को भी कह दिया कि जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक शेखर का आसन औरों से कुछ हटाकर लगाया जाए। शेखर को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन रसोइयों को वह झगड़े में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए वह निर्णय होने तक एक होटल में जाकर भोजन करने लगा। निर्णय हो गया। प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि हॉस्टल ब्राह्मणों के लिए है, और ब्राह्मणत्व का निर्णय केवल कुल से ही हो सकता है, क्योंकि आचार ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के हैं। शेखर जन्मतः ब्राह्मण है, इसलिए वहीं रहेगा और वहीं भोजन करेगा, उसे हटने को बाध्य नहीं किया जा सकता। शेखर की जीत हुई। लड़कों को भी अधिक लड़ाई झगड़ा करने से लाभ नहीं जान पड़ा। बात यहाँ समाप्त हो गई। यद्यपि लड़कों ने कभी शेखर को उसकी विजय के लिए क्षमा नहीं किया, और उस पर यह जताने का कोई अवसर नहीं खोया कि प्रिंसिपल चाहे कुछ कहे, वह उसे ब्राह्मण नहीं समझते। जीत कर शेखर को कोई उल्लास नहीं हुआ, या सोचकर भी नहीं कि उसने कुमार पर विजय पाई है। उस पर विजय पाने का कोई अब महत्व नहीं रह गया था। उसने कॉलेज से समाप्त भर की छुट्टी ली, उसने कॉलेज से सप्ताह भर की छुट्टी ली और सैर करने के लिए मालाबार की ओर चल दिया। पैसे उसके पास थे, क्योंकि कुमार से झगड़ा होने के बाद उसके पिता से क्षमा मांग ली थी। मालाबार बहुत सुंदर प्रदेश है, लेकिन शेखर वहाँ सौंदर्य देखने नहीं गया था। कॉलेज में ही मालाबार में छुआछूत संबंधी जो कहानियाँ उसके लिए, वे बातें इतनी असंभव थी कि वह उन्हें कहानियों से अधिक कुछ नहीं समझ पाता था। उसने सुनी थी, उन्हीं के कारण वह उधर आकृष्ट हुआ था। वहाँ के अछूत पंचम किसी कुलीन ब्राह्मण के पास दायरे के भीतर नहीं आ सकते। कुछ गज दूर रहना होता है ब्राह्मणों के लिए अलग सड़कें हैं जिन पर पंचम नहीं चल सकते। पंचमों को नदियां नाव बैठकर या किसी प्रकार पार करनी होती है, क्योंकि पुल ऊंची जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। ब्राह्मणों के पड़ोस में अछूत भूमि नहीं ले सकते, और कभी ब्राह्मण और पंचम का सामना हो जाए तो पंचम को पंचमत्व घोषित करना पड़ता है कि अनजाने में उसकी छाया ब्राह्मण पर पड़ ना जाए। यह सब उसने सुना था, लेकिन सुनकर विश्वास नहीं कर सकता था। जब कॉलेज में छुआछूत के प्रश्न पर ही उसका झगड़ा हुआ और उसकी जीत हो गई, तब वह मालाबर की दशा देखने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने आर्य समाज मिशन के भवन पर अपना सामान रखा। कुछ देर वह प्रतीक्षा में रहा कि मिशन के कोई कार्यकर्ता मिले तो उनसे बातचीत करे, लेकिन वे सभी बाहर गए हुए थे। अंत में यह देख कर कि दिन भर की होती हुई बारिश कुछ थम गई है, उसने झट से कपड़े बदले, साधारण मद्रासी पोशाक पहनी और नंगे पैर घूमने चल पड़ा। शाम हो चली। शेखर भटकता हुआ एक सूनी सी सड़क पर निकल गया था और सोच रहा था कि किधर से लौटने में सुविधा रहेगा। सड़कों पर प्रायः कीचड़ था, कहीं कहीं पूर्णतः पानी से ढकी हुई थी, और कहीं धान के खेतों में जाती हुई कोई सड़क उसकी मेड़ से बढ़कर फैले हुए पानी में खो जाती थी। शेखर सिर झुकाए कुछ सोचता हुआ वहां चला जा रहा था। संध्या थी, पानी में आकाश के रंग कुछ धुंधले होकर चमक रहे थे। पेड़ों की हरियाली पर एक ताम्रता सी छा चली थी और धन खेतों पर भी एक मधुर सी उदासी धीरे धीरे ओस की तरह घनीभूत हो रही थी। सन्नाटा था, पक्षी पुकार रहे थे, मेंढक अपने कर्कश फटे हुए स्वर से अनवरत टर्रा रहे थे। निर्वरता नहीं थी, फिर भी बड़ा गहरा सन्नाटा था। शेखर कीच भरी सड़क से हटकर एक पथ पर हो गया। यह कुछ सूखा था, इसलिए शेखर के पैर अपने ही उधर मुड़ गए। यद्यपि यह उसे ठीक निश्चय नहीं था कि डेरे पर लौटने का वही छोटा रास्ता था, पथ के दोनों ओर पानी बहा जा रहा था। एक कहराने की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा और वह रुककर सुनने लगा कि यह स्वर कहाँ से आया था। क्षण ही भर बाद फिर वह आया और शेखर ने पथ के एक ओर बहती हुई नाली पर छाई हुई एक झाड़ी के पास आकर देखा। मैली लाल धोती से आधा आवृत रक्त और मांस का एक लोंधा पड़ा है जो कभी एक स्त्री रहा होगा, और उस लोंधे में प्राण है और पीड़ा की अनुभूति है। एक ही क्षण के लिए, लेकिन बहुत से कारणों से जिनमें उस लोंधे का स्त्री होना भी एक था, शेखर हिचकिचाया, फिर किसी तरह उस शरीर को अपने पीठ पर लादा और लौटकर सड़क सड़क होता हुआ मिशन भवन तक ले गया। वहाँ उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन भोर होते होते वह मर गई। मिशन वालों ने उसके जलाने का प्रबंध किया, वह अछूत थी। पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन शेखर रुका नहीं। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और फौरन मद्रास लौट गया। वहाँ क्षण भर भी और ठहरना उसे असंभव जान पड़ने लगा। ट्रेन में उसने अखबार में पढ़ा कि लाश की जांच के बाद यह घोषणा की गई कि उसकी मृत्यु किसी भोंतरे औजार के चोट से हुई थी। हत्या के कारण का पता नहीं लग सका है, लेकिन साथ ही यह भी समाचार था कि शरीर एक वर्जित सड़क पर पाया गया और स्त्री अछूत थी। शेखर को याद आया कि किस प्रकार उस स्त्री के रक्त और कीच से उसका शरीर उसे वस्त्र सन गए थे और एक कपकपी उसके अंगों में दौड़ गई। वह थी अछूत और वह था ब्राह्मण और उसके रक्त में सन गया था, और उसके हत्यारे थे ब्राह्मण जिन्होंने उसके पास आने की छूत से बचने के लिए स्वयं उसके पास जाकर उसे पत्थरों से मारा होगा। ब्राह्मण, वही ब्राह्मण जो शेखर है, और अछूत, वही अछूत जिसे शेखर ने कंधे पर लादा था और उसका रक्त। बोर्डिंग पहुंचकर शेखर ने अपना सामान इत्यादि बांधकर तैयार किया, रिक्शा मांगकर उसमें लादा और और रिक्शे वालों को पता देकर स्वयं ट्राम में बैठकर दूसरे हॉस्टल में चला गया जो अछूतों के लिए था और जहाँ कार्यकर्ता भी सब अछूत थे। यहाँ पहले तो सब ने उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन शीघ्र ही वह दिन आ गया जबकि शेखर ने पाया कि उसके मित्र और सखा और सहायक सब अछूत हैं, उसके भाई अछूत हैं, और कि जिस समाज में उसे होना चाहिए उसमें वह अछूत है और या सह नहीं सकता कि वह इसके अतिरिक्त कुछ भी हो। कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, कि धीरे धीरे अज्ञान दूर होगा या आत्मा पर छाया हुआ कोहरा उठ जाएगा। कहते हैं बहुत कुछ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा के युग बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। कोहरा उठ सकता है, पर्दा भी उठ सकता है, पर दीवार नहीं उठ सकती। उसे फोड़ना ही पड़ता है, गिराना ही पड़ता है, नहीं तो वह नहीं मिटती। शेखर बोल रहा है, वह स्वभावतः चुप रहने वाला है, लेकिन उसके भीतर कुछ है जो उसे चुप नहीं रहने देता, जो उसके संकोच के पीछे से निरंतर चोट करता हुआ उसे बाध्य किए जाता है। उन अछूतों में से शेखर ने मित्र बनाने आरंभ किए हैं और अपने भीतर ही इस बाध्यता को, उसके प्रत्येक बदलते हुए पर्दे को और उन पर प्रकट करता है। कुछ एक लड़के इकट्ठे करके उसने एक समिति सी बना ली है जिसका नाम नियम कोई नहीं, लेकिन जो प्रायः उसके कमरे में सम्मिलित होती है और जिनसे में निरंतर विचारों का विनिमय और रुचियों, भावों और भावनाओं का संघर्षण होता रहता है। शेखर उनका नेता नहीं है, ना अपने मन में ना उनके मन में, लेकिन नेतृत्व किसी तरह उसी की ओर से उद्भव होती है। वह जो आकारहीन सी समिति है वह इसलिए चलती है कि शेखर है। पैराग्राफ चेंज। एक समतल उजाड़ भूमि के मध्य में, जिसे हॉस्टल के छात्र अपना प्लेग्राउंड कहते हैं, अछूतों का तीमंजिला हॉस्टल खड़ा है और उसकी छत के पक्के फर्श पर बिना कुछ बिछाए चार लड़के लेटे हैं। वह शेखर की नामहीन समिति की कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इन चारों में अशांति भीतरी है, वे जाग रहे हैं और आसपास देखकर स्वभावतः चिंतित है। समिति के दूसरे दो तीन सदस्य अपनी गति, अपनी परवाह नहीं रखते। उनमें लहर तब उठती है जब कोई हाथ से हिला देता है या दूर से एक ठेला उनकी ऊपर छाई हुई शांत निस्तब्धता में गिरा देता है। शेखर के अतिरिक्त बाकियों के नाम है सदाशिव, राघवन और देवदास। इनमें सदाशिव कद में सबसे छोटा किंतु बुद्धि में सबसे तीव्र था। उसके प्रायः खुले हुए टेनिस कॉलर के ऊपर उसकी पतली ग्रीवा, उसके ऊपर बिखरे हुए बालों के कारण और भी बड़े दिखने वाले सिर की छाया में शांत अंडकार चेहरा, जिसकी छोटी किंतु खूब खुली सी रहने वाली आंखों में एक समझदार करुणा का भाव रहता है। मानो आंखें कह रही हो, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, केवल निकट से देखकर जानना चाहती हूँ। इन सब को देखकर हठात शैली में एक चित्र की याद आती थी और शेखर ने उसका नाम ही शैली रख दिया था। सदाशिव इस नाम से बहुत झेपता था। उसे लगता था कि शायद उसके आत्मविस्मृत कर देने वाले प्रकृति प्रेम पर कटाक्ष है, इसलिए यह नाम अस्थाई हो गया था। राघवन और देवदास कुछ भिन्न थे। दोनों ही तमिल प्रांत के शहरों के रहने वाले थे और शहर की छाप उन पर पर्याप्त मात्रा में थी। और राघवन की आंखें चंचल मछलियों की तरह चमकती थी और देवदास की आंखें तो मानो हर समय किसी शरारत को खोज में रहती थी। उनमें विष नहीं था, मानव जाति के प्रति एक स्नेह का भाव ही था, लेकिन स्वभाव से देवदास का स्नेह उस प्रकार का नहीं था जो अलग रहकर अपनी अभिमान भरी निर्भरता से ही अपने को कह डालता है। उस तरह सेंटिमेंटलिज्म उसे बुरा लगता था। इसने निरंतर चुलबुलाहट में बातचीत, हंसी मजाक में अपने को छिपाए रखे या उसे ठीक लगता था। कभी कोई उसकी हृदयहीनता और आक्षेप कर देता तो वह हंसकर कहता था, भाई एक प्रेम होता है जो साष्टांग करते रास्ते में बिछ जाता है, वह होता है जो हर समय गुड़गुड़ाता और चुटकियां काटता चलता है। पहले ढंग का प्रेम मेरे बस का नहीं है और या बहाना नहीं था, इसमें सत्यता थी। प्रकृति दोष या गुण से ही वह सत्य भी सीधे साधे और सीधे सच्चे ढंग से नहीं कह सकता। अपने संकोचशील किंतु पैनी बुद्धि के कारण और त्रावणकोर की विस्तीर्ण हरियाली और नीलिमा में पले हुए उदार सौंदर्य प्रेम के कारण सदाशिव शेखर के अधिक निकट था। लेकिन शेखर जानता था कि देवदास और राघवन के बिना जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, और उसे प्रसन्नता थी कि वे भी उसकी समिति में है, क्योंकि जीवन की पूर्णता का पाना ही समिति का ध्येय था। छत पर लेटे लेटे शेखर बीच बीच में सदाशिव की ओर देखता जाता था कि कहीं वह सूर्य अस्त में ही तो नहीं खो गया है, और कहता जाता था, उस स्टीव सेंसन की किताब में एक कहानी चार सुधारकों की है जो सोचने बैठे कि दुनिया को कैसे सुधारा जाए। ना एक ने समाज की कुछ बुराइयों बताकर कहा कि समाज को मिटा देना है, धर्म की कुल बुराइयों की जड़ है और उसी को मिटा देना चाहिए। तीसरे ने कहा कि धर्म तो केवल संस्कृति का आदर्श नियम होता है, अगर संस्कृति खराब होगी तो धर्म ठीक कैसे हो सकता है, इसलिए संस्कृति ही गलत चीज़ है। अंत में वह इस नतीजे में पर पहुँचे कि मानव जहाँ आगे बढ़ना चाहेगा वहाँ संस्कृति तो होगी ही, इसलिए मानव जाति ही मूल अपराधी है और उसी का मटिया मेट कर देना चाहिए। अपने आप में यह नतीजा बहुत ठीक है, मानव जाति को मिटा दीजिए, तब ना हम यहाँ सुधार पर बहस करने को रहेंगे, ना सदाशिव की बहस के बीच में सूर्य अस्त में लीन होकर मेरा अपमान करने को रहेगा ना। सदाशिव ने मानो संलग्नता प्रमाणित करने के लिए कहा, और ना शेखर किसी का ध्यान दूसरी जगह समझकर उसे गालियां दे सकेगा। सब हंस पड़े। शेखर फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि इस तरह के आमूल परिवर्तन ना करने में खतरा है, या मैं नहीं कहता कि केवल सत्ता पर सुधार किया जाए, वह भी बेवकूफ़ी है। परिवर्तन होना मूल में ही चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ पर बुराई साफ लक्ष्य हो, केवल तर्क से सिद्ध करने के दिखने वाली नहीं। राघवन ने कहा, यानी इस कहानी में देखो धर्म संस्कृति का आदर्श नियम है, इसलिए धर्म की बुराइयाँ संस्कृति से पैदा होती, इसलिए संस्कृति बुरी है या केवल तर्कना शक्ति का नट का तमाशा है। संस्कृति की बुराई अगर हमें देखनी है तो संस्कृति में स्पष्ट देखनी होगी, इस प्रकार दूर से सिद्ध नहीं करनी होगी, नहीं तो कहीं अच्छा कुछ है ही नहीं, बुराई ही बुराई है। और यह हमारी आसंति भी तो उस बुराई में पैदा हुआ मनोविकार है। मानो बुरा होकर अच्छी बात सोच नहीं सह सकता। आप अंधकार दूर करना चाहे तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे, या नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधेरापन मिटा दे।